दिन भर तारीख 17 मई दिन मंगलवार, मैं हूं मोहन लाल शर्मा। भारत के नक्शे को गलत दिखाने से रोकने वाले प्रस्तावित विधेयक पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में दर्ज कराई आपत्ति। भारत ने कहा पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग।
सिंस द होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और एनी अदर पार्टी हैज नो लोकल स्टैंड बाय इन द मैटर।
पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने, तेज हुई बयानी जंग।
सीबीआई की मांग को स्वीकार कर यह भी स्वीकार कर लिया है कि बिहार पुलिस पर बिहार के लोगों का भरोसा नहीं।
राजस्थान में अजमेर में 8 नवजात शिशुओं की मौत पर उठे सवाल। खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। भारत के जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के मसौदे पर पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज कराई है। भारत सरकार के इस प्रस्तावित विधेयक में भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने पर अधिकतम 7 साल की सजा और 100 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। पाकिस्तान के एतराज पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने एक बयान में कहा है कि प्रस्तावित विधेयक भारत का आंतरिक मामला है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान या किसी अन्य पक्ष का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के जिंद में एक गांव के एक पुराने कुएं से पानी निकालने के मकसद से उतरे 5 दलित युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुएं में गंदगी की वजह से जहरीली गैस पैदा हो रही थी। जिंद के निंदाणा गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले धनक समुदाय के युवक कुछ सालों से बेकार पड़े एक कुएं से पानी निकालने के लिए उतरे थे। एक दूसरे को बचाने गए 5 युवकों की यहां मौत हो गई। जिंद के डिप्टी कमिश्नर विनय सिंह ने मरने वाले युवकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ब्रिटानी नेता बोरिस जॉनसन के उस बयान की कड़ी निंदा की है जिसमें बोरिस जॉनसन ने यूरोपीय संघ के लक्ष्य की तुलना हिटलर से की थी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूरोपीय संघ यूरोप की को उसी तरह एकीकृत करना चाहता है जैसे हिटलर करना चाहता था। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर होने की पुरजोर हिमायत करते रहे हैं। डोनाल्ड टस्क ने कहा कि वो इस तुलना पर चुप नहीं रह सकते। डोनाल्ड टस्क ने
When I hear the EU being compared to the plans and projects of Adolf Hitler, I cannot.
यूरोपीय संघ की तुलना जब हिटलर की योजना से की जाए तो मैं चुप नहीं रह सकता। ऐसे बेतुके तर्क को नजरअंदाज करना चाहिए अगर किसी बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने ये ना दिया होता तो। लेकिन बोरिस जॉनसन ने एक तर्कपूर्ण बहस की हद पार करके राजनीतिक भूल की है। हमें फिर से एक घिसे पिटे सच को याद करना होगा कि संघ का विकल्प सिर्फ राजनीतिक उहापोह ही हो सकती है। ये थे डोनाल्ड टस्क के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराक की राजधानी बगदाद में 4 बम धमाकों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। खबरें हैं कि शिया बहुल अल शाब इलाके में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया। वहीं बाकी धमाके शिया बहुल जिले सद्र और दक्षिण में अल रशीद के एक बाजार में हुए। सुन्नी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इराक में स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि 100 से ज्यादा लोग इन धमाकों में घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। आप लोगों ने बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कि भारत के ऐसे नक्शे देखे होंगे जिसमें कि भारत की आधिकारिक सीमाएं नहीं होती हैं। और ये भी आप जानते होंगे कि हाल में ही भारत सरकार ने एक ऐसे नए विधेयक का प्रस्ताव यानी कि जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल का मसौदा तैयार किया था जिसके मुताबिक यदि भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाया जाता है तो इसके लिए अधिकतम 7 साल की सजा और 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पाकिस्तान की सरकार ने भारत के इस प्रस्तावित विधेयक के मसौदे पर संयुक्त राष्ट्र में एक शिकायत दर्ज कराई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को भारत के इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन करते हुए भारत के आधिकारिक नक्शे में जम्मू कश्मीर के विवादित क्षेत्र को भारत का हिस्सा दिखाया गया है जो कि तथ्यात्मक रूप से गलत है और कानूनी तौर पर स्वीकार्य नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया दी।
सिंस द होल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और एनी अदर पार्टी।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप कह रहे थे, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, पाकिस्तान या फिर किसी और पार्टी का इस मामले में कोई दखल नहीं है। भारत सरकार ऐसे मामलों को, जिन्हें भारत पाकिस्तान के साथ हमेशा द्विपक्षीय स्तर पर सुलझाने को तैयार है, पर इसे लेकर पाकिस्तान के बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हवाले करने की बढ़ती कोशिशों को वो खारिज करती है। गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसी सूचनाओं से देश की सुरक्षा, संप्रभुता और एकता पर असर पड़ सकता है। अब से कुछ देर पहले मैंने इस्लामाबाद में बीबीसी संवाददाता हारून रशीद से पूछा कि भारत के इस प्रस्तावित विधेयक को लेकर पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है।
देखिए, पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है उसके जो प्रवक्ता हैं मोहम्मद नफीस जिक्रिया, उन्होंने एक बयान यहाँ आज जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि परमानेंट डेलीगेट हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने लेटर्स लिखे हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल और जो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उनको, और अपनी चिंता से उनको आगाह किया है कि ये जो भारत एक नया कानून लेके आ रहा है, जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल, तो ये जो है खुद यूएन की जो पहले इतिहास में करारदादें कुछ कश्मीर पे मंजूर हुई हैं तो उनकी खिलाफ वर्जी है, लिहाजा यूएन जो है वो इस पर कोई एक्शन ले और इंडिया को इससे रोके। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस की जो कश्मीर पर रेजोल्यूशंस हैं उनमें इस इलाके को डिस्प्यूटेड करार दिया गया है, लेकिन ये जो नया कानून, अगर हिंदुस्तान ये कानून लाता है तो जो कश्मीर के इलाके को अगर कोई डिस्प्यूटेड इलाका कहेगा तो उसको सजा हो सकती है, तो इस पर पाकिस्तान को चिंता है और उन्होंने ये जो बयान है जारी किया है और यूएन को अप्रोच करने की कोशिश की है।
क्या इसे इस तरह से माना जाए कि एक बार फिर से पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले को फिर से उछालने की कोशिश की है, भले ही नक्शे के जरिए?
जी बिल्कुल, ये तो आपको पता है कि सबसे सेंसिटिव इशू जो दोनों देशों के दरमियान है वो कश्मीर का ही है। पाकिस्तान तो इसे कोर इशू करार देता है और कहता है कि जब तक इसका हल नहीं होगा दोनों देशों के दरमियान ताल्लुकात भी बेहतर नहीं हो सकते। तो लगता ये है कि जो वो नई टेक्नोलॉजी आ रही है और जो नए जदीद जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन की ज़रूरत शायद भारत को पड़ रही है, तो वो भी पाकिस्तान के इस एतराज़ के बाद अब कंट्रोवर्शियल हो गई है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और उसने जो इंटरनेशनल बरादरी है, कम्यूनिटी, उससे भी कहा है कि वो भी इसमें स्टेप इन करे और एक जो डिस्प्यूटेड मसला है उसको भारत जो इस तरह से अगर परमानेंट करने की कोशिश कर रहा है तो उससे रोके।
ये थे इस्लामाबाद में बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद, जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान का क्या पक्ष है और वो क्या कह रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है ये भारत का जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल, क्या है इसके प्रावधान, अजय शर्मा से सुनते हैं।
किसी भी शख्स को सैटेलाइट, एयरक्राफ्ट, बलून, मानव रहित विमान या जमीनी वाहनों के जरिए इकट्ठा की गई भारत की जियो स्पेशल तस्वीरें या डेटा रखने का हक नहीं है। किसी भी शख्स जिसके पास भारत के किसी भी हिस्से की ऐसी जियो स्पेशल तस्वीरें या डेटा मिलेगा तो उन्हें कानून बनने के एक साल के भीतर बताई गई फीस के साथ इसे रखने का लाइसेंस पाने के लिए एप्लीकेशन देनी होगी। ये आवेदन सिक्योरिटी वेटिंग एजेंसी के सामने करना होगा। सिक्योरिटी वेटिंग एजेंसी एप्लीकेशन मिलने के अगले 3 महीने में इसकी जाँच करेगी और या तो शर्तों के साथ लाइसेंस जारी करेगी या एप्लीकेशन रद्द कर देगी। हालांकि रद्द करने की हालत में आवेदक को अपील करने की इजाज़त होगी। कानून बनने के बाद किसी भी शख्स को इंटरनेट या ऑनलाइन सेवाओं या प्रिंट के जरिए भारत की जियो स्पेशल जानकारी छापने, बांटने या उसके विजुअलाइजेशन की इजाज़त नहीं होगी। जिस शख्स के पास भारत की जियो स्पेशल जानकारी मिलती है उसे सेक्शन 3 के उल्लंघन के मामले में 1 करोड़ रुपये से लेकर 100 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और या 7 साल की कैद हो सकती है।
अजय शर्मा बता रहे थे कि क्या है भारत का जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन विधेयक जो प्रस्तावित है, और भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने से रोकने वाले इस प्रस्तावित विधेयक पर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में आपत्ति दर्ज कराई है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर। रुख बिहार का करते हैं। बिहार के गया में रोडरेज की मामूली घटना में इस महीने की 7 तारीख को व्यवसायी पुत्र की हत्या, सिवान में 13 तारीख को पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर बहस तेज हो गई है। क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से बयानबाजी हो रही है, पटना से हमारे सहयोगी नीरज सहाय ने हमें ये रिपोर्ट भेजी है।
राज्य के मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फिर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केवल शराबबंदी अभियान में प्रशासन की पूरी ताकत झोंक दी है, इसलिए कानून व्यवस्था और दूसरी घटनाओं पर उनकी पकड़ लगातार ढीली हो रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पत्रकार मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को देने का फैसला और जनता दल यूनाइटेड की निलंबित पार्षद मनोरमा देवी का आज आत्मसमर्पण करना राज्य सरकार और पुलिस की विफलता बता रहा है।
बिहार की पुलिस इस मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है। सीबीआई की मांग को स्वीकार कर यह भी स्वीकार कर लिया है कि बिहार पुलिस पर बिहार के लोगों का भरोसा नहीं है। तो FIR क्यों नहीं दर्ज किया गया उसी रात को? उसी रात को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? उसी रात को उनके मकान को सील क्यों नहीं किया गया? तो आप पत्रकारों से पूछ रहे हैं तो पहले तो आप बताएं कि उनको भागने का मौका क्यों दिया? मनोरमा देवी ने कहा था कि उनके बेटे ने कहा कि माँ ने मुझे खबर किया तो मैं आ गया। उनकी माँ को पूरा मालूम था।
उल्लेखनीय है कि कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद एक सवाल के जवाब में इस बात से असहमति जाहिर की थी कि शराबबंदी अभियान के चलते प्रशासन ने अपराध रोकने में कोताही बरतना शुरू कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि
जो लोग जंगल राज का डर दिखाकर वोट लेना चाहते
और अभी एक और बहुत बड़ा काम हम लोगों ने कर दिया, वो है शराबबंदी का। तो हम चाहे जनहित में जितनी मेहनत करते रहे, कोई एक घटना को लेकर चाहे उस घटना के बारे में उनसे ज्यादा संवेदनशीलता हमारी, मेरा काम है काम करना। जनता ने काम करने के लिए जनादेश मुझको दिया है, हम काम करते रहे।
हालांकि इस मुद्दे पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पिछले 6 महीने में सत्ता से जुड़े लोगों के 13 मामले आए, लेकिन सरकार उन घटनाओं में अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है। महागठबंधन के घटक दल राजद ने सजायाफ्ता अपराधी को पार्टी की समिति में शामिल कर लिया है।
जहां राष्ट्रीय जनता दल ने राजवल्लभ यादव को निलंबित किया, लेकिन शहाबुद्दीन जो सजायाफ्ता है जिसको आजीवन कारावास की सजा है उसको आपने सस्पेंड नहीं किया, और आपने उसको जो नीति निर्णायक फोरम है उसमें आपने उनको शामिल कर दिया। और बिहार सरकार का मंत्री मिलने जाता है जेल के अंदर, मंत्री को शो कॉज भी नहीं किया गया। तो पहले तो आप बताइए ना कि आप क्या, आपने क्या कार्रवाई की।
जाहिर है राज्य में पक्ष और विपक्ष के दावे के बीच अब जनता को यह तय करना है कि कौन सही कह रहा है और कौन गलत। नीरज सहाय, BBC, पटना।
बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। बिहार से आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां के अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में शनिवार रात से सोमवार सुबह तक 8 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है। इन्हें अजमेर के आसपास के इलाकों से यहां रेफर होने के बाद भर्ती कराया गया था। घटना की पूरी जानकारी के साथ जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में नवजात शिशुओं की मौत के बाद सरकार हरकत में आई है। इनमें से 5 बच्चों की मौत एक ही रात में हुई थी। उसके बाद चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर हालत का जायजा लिया और अब अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि रात को भी वरिष्ठ डॉक्टर ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। ब्यावर के जमालपुरा गांव के भीकम चंद की बहन के बच्चे की भी यहां मौत हुई। बच्चे का अभी नामकरण भी नहीं हुआ था। उन्होंने शिकायत की कि बच्चों के वार्ड में वातानुकूलन सही नहीं था और गंभीर बच्चों को तुरंत इलाज मिलने में भी वहां चूक दिखी। उन्होंने BBC को बताया।
हाँ मैडम, व्यवस्था की कमी थी ना मैडम, क्योंकि वो कितनी गर्मी पड़ती है मैडम, ऐसी एक तो वो ऐसी नहीं थी, हो सकता है उस समय मैडम कम से कम 6-7 बच्चे की डेथ हुई थी। दूसरी बात, जब हम 3 बार 2 बार बुलाने गए ना मैडम, उसके बाद डॉक्टर आया था, 20 से 25 मिनट लग गया होगा उसको ट्रीटमेंट चालू करने में। जो भी इमरजेंसी केस आते हैं तो पहले उसको जान देना चाहिए ना मैडम, उसके बाद में उन्होंने डॉक्टर, मेरा तबियत ज्यादा खराब है, वहाँ ले जाओ। पहले उससे एक दिन पहले मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल में चेक कराया तो उन्होंने डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला इसको भर्ती, अगर वो सीरियस होता तो मैडम वो डॉक्टर भी तो बोलते होता इसको भर्ती कराओ, प्राइवेट डॉक्टर को ले गया। तो
उधर अस्पताल के कार्यवाहक अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर विक्रांत शर्मा ने कहा कि यह महज इत्तेफाक रहा कि एक ही रात में 5 बच्चों की मौत हो गई, वरना ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं या व्यवस्था की चूक है।
आप किसी के व्यक्ति को भेज के देखें वहाँ पे एसी प्रॉपर काम कर रहा है, उसका टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है उस आईसीयू का, नहीं तो बच्चे हैं ना एसी वाले में हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। बच्चों के लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर रखना पड़ता है, उस पर रखना पड़ता है उनको। ये कोई इंसिडेंस था, ये अलग अलग जगह से आए हुए मरीज थे, उनसे रेफर किया हुआ था, वहाँ से भी पता करवा लिया, ये सीरियस थे तभी इनको भेजा गया है, और यहाँ पे और भी सीरियस मरीज थे जो भी वहाँ पर ठीक हो रहे हैं। ये कोई इंसिडेंस था जिसकी वजह से हो गया, नहीं तो भीलवाड़ा से यहाँ क्यों आएगा, अगर ठीक होता तो वो यहाँ पे क्यों भेजते, ये यहाँ पे क्यों आता।
उधर राजस्थान में बाल मृत्यु दर से जुड़े सवालों पर जब बीबीसी ने सेव द चिल्ड्रन के ओम प्रकाश सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि कम्युनिटी केयर और ट्रेनिंग राजस्थान में उतनी स्ट्रांग नहीं है जैसी होनी चाहिए।
फैसिलिटी एक पॉइंट है लेकिन उसके बड़ा जो हिस्सा होता है वो बिलोंग करता है कम्युनिटी केयर के ऊपर, तो हम कहीं ना कहीं हम कम्युनिटी केयर तो उतने स्ट्रांग नहीं हो पाए हैं, इसलिए केसेस को फैसिलिटी पे आ जाना पड़ता है। अब फैसिलिटी पे क्या होता है कि फैसिलिटी के ऊपर केयर जो प्रोवाइड करते हैं, एक तो दे ऑल मस्ट बी ट्रेन्ड वेरी वेल, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करते हैं बच्चों को बचाने के लिए। अभिभावकों को उन सबको ये कम से कम मालूम तो पड़े कि बच्चा कब डेंजर साइन में आ रहा है, वो टाइम पे लेके पहुंचेंगे नहीं तो फिर मतलब अगर देर से पहुंचेंगे तो वहां पर डॉक्टर वगैरह इलाज करेंगे, इसका एक पॉइंट ये भी होता है ना।
राजस्थान शिशु मृत्यु दर नियंत्रण के मामले में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को नहीं पा सका। 33 जिलों वाले राज्य में 36 सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स हैं। अजमेर की घटना से ये सबक लेने का समय है कि इन इकाइयों में जितनी अच्छी सुविधाएं हैं उतने ही चुस्त दुरुस्त और प्रशिक्षित स्टाफ भी भर्ती किए जाएं ताकि ऐसी दुखद घटनाएं फिर से ना हों। जयपुर से आभा शर्मा।
अजमेर में 8 नवजात शिशुओं की मौत के बाद उठे सवाल। और अब बात मध्य प्रदेश के सिंहस्थ कुंभ की, जो अपने विवादों के लिए जाना जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि उसने सिंहस्थ कुंभ के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की, जहां दलितों के लिए अलग से स्नान कराने की कोशिश की गई। वहीं उज्जैन के करीब निनौरा में वैचारिक कुंभ आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक बना दिया गया। पेश है भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये सिंहस्थ कुंभ क्यों विवादास्पद बन गया।
उज्जैन में एक माह तक चलने वाला सिंहस्थ 21 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन इस सिंहस्थ को विवादों के लिए भी जाना जाएगा। ये पहला मौका था जब सिंहस्थ के दौरान वैचारिक महाकुंभ करके राजनेताओं का जमावड़ा लगाया गया। इस वैचारिक कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत और कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। उज्जैन से चंद किलोमीटर दूर निनौरा में आयोजित इस वैचारिक महाकुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को समापन के मौके पर नागा साधुओं पर टिप्पणी करके विवाद पैदा कर दिया। उनकी टिप्पणी ने नागा साधुओं को नाराज कर दिया।
कभी कभी मुझे लगता है दुनिया हमें कहती है कि हम बहुत ही अनऑर्गेनाइज लोग हैं, बड़े ही विचित्र प्रकार का जीवन जीने वाले, बाहर वालों की नजर में हमें देखते हैं, लेकिन हमें अपनी बात दुनिया के सामने सही तरीके से रखने की आती नहीं। हमने देखा है कुंभ मेला याने एक ही पहचान बना दी गई है, नागा साधु, उनकी फोटो निकालना, उनका प्रचार करना, उनको दर्शन के लिए जाना, इसी के आसपास उसको सीमित कर दिया गया है।
इसके पहले प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर निनौरा में भव्य तैयारियां की गई थी और 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकार ने इस कार्यक्रम में पर्यावरण की बड़े पैमाने पर अनदेखी की, यही वजह है कि इसको लेकर पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोग नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पहुंच गए। सामाजिक कार्यकर्ता अजय दुबे इस पूरे कार्यक्रम को ही गैर जरूरी बता रहे हैं।
देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने वैचारिक महाकुंभ के नाम पे पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाई है। जो पर्यावरण संरक्षण है उसको दरकिनार करते हुए, किसानों को अपमानित करते हुए बड़े पैमाने में 550 बीघा जमीन को एक्वायर किया। ये कहा गया पार्किंग करेंगे, वहां पर बड़े बड़े सीमेंट के स्ट्रक्चर बनाए गए, एयर कंडीशन डोम बनाए गए, 50 से अधिक पेड़ काटे गए, डामर से 8 हेलीपैड बनाए गए, किसानों की खेत में मुरम डाल दी गई, जिससे पूरा वहां का न केवल पर्यावरण बर्बाद हुआ बल्कि वहां पर जो बर्बर तानाशाही रवैये सरकार ने अपनाया वो सबसे दुखद था। हमने जो ग्रीन ट्रिब्यूनल से मांग करी है कि इस पूरे आयोजन का सिहत के एनवायरमेंटल मास्टर प्लान में कहीं उल्लेख नहीं था, इसकी जांच हो कि इस तरह बड़े पैमाने पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाया, और जो अधिकारी है उन पर हर्जाना, और जो किसान और जो पर्यावरण को क्षति हुई इसकी भरपाई की जाए।
ये वो सिंहस्थ है जिसमें पहली बार ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश की गई जो पहले कभी नहीं हुई थी। सरकार दलितों के लिए अलग से स्नान आयोजित करना चाहती थी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में समरसता स्नान होना था, लेकिन उसके खिलाफ साधु संतों के साथ ही विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो गई। आखिरकार उसका नाम बदलकर सभी संतों के साथ स्नान किया गया। कांग्रेस पार्टी ने नागा साधुओं पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी को गैर जरूरी बताया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने नरेंद्र मोदी के उज्जैन आकर शिप्रा में स्नान नहीं करने और महाकाल के दर्शन नहीं करने पर भी सवाल उठाए।
देश के प्रधानमंत्री वहां पर आए थे, उन्होंने नागा साधुओं पर जो टिप्पणी की है, समुदाय पर जो टिप्पणी की है, गैर वाजिब है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है, सीएस की पहली बार मध्य प्रदेश की उज्जैनी नगरी में नहीं हो रहा है, आदिकाल से ये परंपराएं चली आ रही है, और साधु संत और नागा साधुओं की ये परंपरा बहुत पुरानी परंपरा है। इसको देश की रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए इस समुदाय का अपना एक आकर्षण हमेशा से रहा है, उस पर टिप्पणी करना इस सीएस का एक बड़ा अपमान है। बड़ी अचरज की बात है कि देश के प्रधानमंत्री आते हैं और उन्हें बाबा महाकाल के मंदिर तक जाने का, मां शिप्रा के में डुबकी लगाने का समय नहीं।
कांग्रेस ये भी मानती है कि इतना विवादित सिंहस्थ पहले कभी नहीं हुआ। ये पहला मौका है जब राज्य सरकार ने इस धार्मिक कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। शुरह नियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
शुरह नियाजी बता रहे थे कि ये सिंहस्थ कुंभ क्यों विवादास्पद बन गया और क्यों अपने विवादों के लिए जाना जाएगा।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर इराक से आ रही है। इराक की राजधानी बगदाद में 4 बम धमाकों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है, कई घायल हैं, और इस तरह की खबरें हैं कि शिया बहुल अल शाब इलाके में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया। बाकी धमाके शिया बहुल इलाका सद्र सिटी और दक्षिण में अल रशीद के एक बाजार में हुए। सुन्नी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि 100 से ज्यादा लोग इन धमाकों में घायल हुए हैं। पिछले हफ्ते आईएस ने ऐसे ही धमाके किए थे जिनमें करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट ने रविवार को एक गैस प्लांट पर भी हमला किया था जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई थी। इराक में राजनीतिक संकट के बीच चरमपंथी हमलों में काफी तेजी आई है। इराक के बाद चीन। चीन के बड़े नेताओं में शुमार जोंग डीजियांग 3 दिवसीय यात्रा पर हांगकांग पहुंचे हैं। उनका वादा है कि वे सभी पक्षों से बात करेंगे, उनका पक्ष सुनेंगे। हांगकांग में पिछले कई सालों से राजनीतिक अस्थिरता फैली हुई है। 2014 से हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बाद से पहली बार चीन का कोई बड़ा नेता हांगकांग की यात्रा पर आया है। डीजियांग की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक और कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लोकतंत्र समर्थकों की योजनाबद्ध विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 6,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अमर शर्मा से।
हांगकांग में लोकतंत्र बहाल करने की मांग को लेकर साल 2014 से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। चीन के शासन में क्षेत्र में असंतोष लगातार बढ़ा है। जांग डेजियांग चीन में हांगकांग और मकाओ मामलों के प्रमुख हैं। वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं, जो उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद चीन का तीसरे पायदान का सबसे महत्वपूर्ण नेता बनाता है। हांगकांग में बीजिंग के कथित हस्तक्षेप और बढ़ते असंतोष के बीच जांग डेजियांग हांगकांग पहुंचे हैं। इसे लेकर हांगकांग में व्यापक सुरक्षा इंतजाम है। 69 वर्षीय जांग ने अपनी इस यात्रा के दौरान सभी पक्षों को सुनने, देखने और बोलने का वादा किया।
मैं यहाँ हांगकांग के विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और हांगकांग की सरकार से उनके कार्यों के बारे में जानने आया हूँ। एक देश दो व्यवस्था, हांगकांग में स्वराज, बड़े स्तर की स्वायत्तता और मौलिक कानूनों को लागू करने के बारे में मैं समाज के अनेक वर्गों के सुझावों और अनुरोधों को सुनने आया हूं।
जांग एक स्वागत समारोह में 4 लोकतंत्र समर्थक विधायकों के एक समूह से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस यात्रा को लेकर इतना विवाद क्यों है। हांगकांग मामलों के प्रमुख के रूप में जांग डेजियांग साल 2014 में हांगकांग के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसले के लिए जिम्मेदार हैं। हांगकांग एक मिनी संविधान या मौलिक कानूनों के तहत नियंत्रित होता है। लोकतंत्र समर्थक नेताओं का सबसे बड़ा उद्देश्य सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा चुने जाने का है। हालांकि चीन ने वादा किया था कि साल 2014 तक हांगकांग में नियमित चुनाव हो जाएंगे। साल 2014 में चीन ने कहा था कि चुनाव में खड़े होने वाले नेता या मुख्य कार्यकारी उस सूची से चुने जाएंगे जिसे प्रभावी ढंग से बीजिंग समर्थक नामांकन समिति चुनेगी। चीन के इस फैसले से लोकतंत्र समर्थकों में नाराजगी फैल गई। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए जिसने एक व्यापक रूप ले लिया था। लाखों प्रदर्शनकारियों ने हफ्तों तक सड़कों पर डेरा डाले रखा, लेकिन सरकार ने कोई रियायत नहीं बरती और धीरे धीरे लोगों के जमावड़े को ध्वस्त कर दिया। मौजूदा मुख्य कार्यकारी सी वाई लियुंग हांगकांग में काफी अलोकप्रिय हैं। समीक्षकों का इस बात की ओर बहुत ज्यादा ध्यान है कि जियांग डेजियांग मुख्य कार्यकारी लियुंग का दूसरे कार्यकाल के लिए समर्थन करते हैं या नहीं। हांगकांग में डेमोक्रेटिक पार्टी की चेयरपर्सन एमिली लाउ ने बीबीसी को बताया
समस्याओं और मतभेदों को खत्म करने का कारगर तरीका है प्रशासन में सुधार। हमें एक लोकतांत्रिक प्रणाली दीजिए और अलोकप्रिय मुख्य कार्यकारी से छुटकारा दिलाइए। मुझे उम्मीद नहीं है कि वे तुरंत हाँ कह दें, लेकिन चूंकि वो यहाँ आए हैं, लोगों की राय को सुनने के बाद यहाँ से बीजिंग लौटकर वो अपने साथियों से इस पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बीजिंग में हांगकांग मामलों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास उचित और नियमित रास्ते हो सकेंगे।
कई कार्यकर्ता समूहों ने कहा है कि जियांग की मौजूदगी के विरोध में उनकी प्रदर्शन करने की योजना है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री के एक प्रवक्ता होंग लेई ने कहा है कि लोकतंत्र के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों से हांगकांग का नुकसान हो सकता है।
चीन के बड़े नेताओं में शुमार एक नेता हांगकांग की यात्रा पर पहुंचे हैं और अब कार्यक्रम में खेल की बात करेंगे। आदेश कुमार गुप्त जी मौजूद हैं। आदेश जी, क्या है आज आपके पिटारे में?
जी मोहनलाल, सबसे पहले बात बैडमिंटन की। चीन में जारी थॉमस और उबेर कप फाइनल्स में भारतीय महिला टीम ने उबेर कप में जर्मनी को 5-0 से मात दी। महिला एकल वर्ग में साइना नेहवाल, पीवी सिंधु और रुत्विका शिवानी ने अपने अपने विरोधियों को मात दी, तो महिला युगल वर्ग में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी के अलावा एनसीके रेड्डी और पीवी सिंधु की जोड़ी भी जीतने में कामयाब रही। लेकिन पुरुषों के थॉमस कप मुकाबलों में भारत को हांगकांग के हाथों 3-2 से हार का सामना करना पड़ा। पुरुष एकल वर्ग में अजय जयराम हांगकांग के एनजी लॉन्ग एंगस से 21-13, 21-12 से हारे, तो भारत की दोनों जोड़ियां भी पुरुष युगल वर्ग में हार गई। केवल पुरुष एकल वर्ग में बी साई प्रणीत हांगकांग के हु युन को और सौरभ वर्मा वेईनान को मात देने में कामयाब रहे। कल पुरुष वर्ग में भारत का सामना इंडोनेशिया से और उबेर कप में भारतीय महिलाओं का सामना जापान से होगा। उधर रियो ओलंपिक में 74 किलो भार वर्ग में नरसिंह यादव या सुशील कुमार कौन कुश्ती मुकाबलों में जाए, इसे लेकर आज उच्च न्यायालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ को निर्देश दिया कि बीजिंग ओलंपिक के कांस्य और लंदन ओलंपिक के रजत पदक विजेता सुशील कुमार की बात सुनी जाए। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 27 मई तय की है। उल्लेखनीय है कि सुशील कुमार ट्रायल की मांग कर रहे हैं। वहीं हॉकी इंडिया ने 10 से 17 जून तक लंदन में होने वाली बेहद महत्वपूर्ण चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की कमान गोलकीपर पी श्रीजेश को सौंपी है, जबकि सरदार सिंह और रुपिंदर पाल सिंह को विश्राम देने का फैसला किया है। इसके अलावा आज आईपीएल 9 में विशाखापत्तनम में दिल्ली डेयरडेविल्स का सामना राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट से होगा। दिल्ली अभी तक 11 में से 6 मैच जीती है और 5 हारी है, जबकि पुणे तो 12 में से केवल 3 मैच जीती है। आज पुणे के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। इराक की राजधानी बगदाद में 4 बम धमाकों में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। खबर है कि शिया बहुल अल शाब इलाके में एक महिला आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया है। भारत के जियो स्पेशल इन्फॉर्मेशन रेगुलेशन बिल 2016 के मसौदे पर पाकिस्तान की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की। भारत ने कहा प्रस्तावित विधेयक भारत का आंतरिक मामला है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। भारत ने कहा पाकिस्तान का इस मामले से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के जिंद में एक गांव में एक पुराने कुएं से पानी निकालने के मकसद से उतरे 5 दलित युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि कुएं में गंदगी की वजह से जहरीली गैस पैदा हो रही थी। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि दुनिया की ताकतें सीरिया में जारी अस्थायी युद्ध विराम की निगरानी के लिए टास्क फोर्स बनाने के लिए राजी हुई। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मुलाकात आपसे होनी तय है घटना चक्र कार्यक्रम में। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।